ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीकृष्ण श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में आप सबका स्वागत है। आज का प्रवचन शुरू करने के पहले एक सूचना है, एक स्वागत है। वृंदावन धाम से कई ब्रह्मचारी भक्त पुस्तक वितरण के यान में यहां पर बेलगाम में हमें संग देने के लिए पधारे हैं। कल शाम यहां आए और आशा करते हैं कि और थोड़े समय रहेंगे। पुस्तक वितरण करते करते दक्षिण भारत की ओर जा रहे हैं। हम उनका स्वागत करना चाहते हैं और यही आशा रखेंगे कि वो यहां पर ऐसे बार बार आते रहें और उनके संग का लाभ हमें देते रहें। तो उनका स्वागत करने के लिए जैसे हम हमेशा करते हैं बड़े उत्साह से 3 बार हरि बोल कहेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर पुस्तक वितरण यान की जय। हरे कृष्णा। आज यहां पे हम एक हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। आप बाएं और दाएं और देखेंगे किसका हैप्पी बर्थडे, किसका है जन्म, आपका है, आपका है, मेरा तो नहीं है। आज जन्म दिवस है किसका? भगवद गीता का जन्म दिवस। आप सोचेंगे अरे ये पुस्तक का कभी जन्म दिवस होता है क्या? लेकिन ये पुस्तक कोई साधारण पुस्तक नहीं है। ये पुस्तक किसी साधारण व्यक्ति ने लिखी हुई कोई उपन्यास या कविता या लेख नहीं है, कोई साधारण पत्रिका नहीं है। यहां पे कोई राजनीति या खेल क्रीड़ा के बारे में कोई खबर नहीं है। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण की वाणी है। शब्द ब्रह्म आध्यात्मिक वचन है ये। भगवद गीता भगवान से अभिन्न है, ये भगवान का संदेश है। इसी दिवस पर 5000 वर्ष से अधिक पूर्व भगवान श्री कृष्ण ने ये भगवद गीता का उपदेश अपने प्रिय भक्त मित्र और शिष्य अर्जुन को दिया कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर। तो इसी दिवस पर युद्ध एकादशी के तिथि पर आरंभ हुआ। इसलिए आज भगवद गीता का प्राकट्य दिवस है, जब भगवद गीता इस पृथ्वी लोक पर प्रकट हुई। वैसे आप तो सब जानते ही हैं कि भगवान श्री कृष्ण ये परम सत्य हैं, भगवान हैं, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। एते चांस कलह पुंसह कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृडयन्ति युगे युगे। श्रीमद् भागवत में बताया जाता है कि जितने भी सारे अवतार हैं, जैसे कि मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार इत्यादि, ये अंश अवतार हैं, लेकिन श्री कृष्ण ये इन सारे अवतारों के उद्गम हैं। ये स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु स्वयं भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम कहलाते हैं और उन्हीं से ये सारे अनंत अवतार उत्पन्न होते हैं। इन अवतारों में और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, ये अभिन्न है, परंतु अलग अलग रूप में, अलग अलग समय पर, अलग अलग कार्यों को संपन्न करने हेतु अलग अलग जगहों में वो प्रकट होते हैं। लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि सारे जो अलग अलग रूप हैं भगवान के, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, ये भी भगवान ही हैं। और इस तरह से इन सारों में अभिन्नता है, परंतु भिन्नता भी है। किस तरह की भिन्नता? एक साधारण उदाहरण देते हैं। अमावस्या का चांद आपने देखा है? नहीं देख सकते ना, कैसे देख सकते? अमावस्या के रात को चांद है, चांद दिखाई नहीं पड़ता। चांद तो है, दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन प्रतिपद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, ऐसे धीरे 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 जैसे तिथियां बढ़ते जाती हैं पूर्णिमा की ओर, वैसे वैसे चांद को क्या होता है? प्रकाश दिखने लगता है, चंद्रमा दिखाई पड़ती है धीरे 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 धीरे। और फिर पूर्णिमा के दिन क्या होता है? पूर्ण चांद दिखाई पड़ता है। अब इन सारे 15 दिनों में अमावस्या से लेकर पूर्णिमा तक चांद तो वही है ना, कि अलग चांद है, या आधा चांद है, आधा चांद कहीं और चला जाता है? ऐसा होता है कि सप्तम के दिन केवल आधा चांद का टुकड़ा है, बाकी आधा चांद कहीं और है? नहीं, चांद तो वैसे का वैसे है, केवल हम आधे चांद को या उससे कम हम देख सकते हैं। मतलब चंद्रमा तो पूर्ण है, लेकिन उसका प्रकाश हमारे दृष्टि में केवल आधा है। और पूर्णिमा के रात को हम पूरे चांद को देख सकते हैं। तो ठीक उसी तरह भगवान श्री कृष्ण ये पूर्णिमा के चांद के समान है, और ये अन्य अवतार जो हैं, ये अन्य तिथियों के चांद के समान हैं। हैं दोनों चांद, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जब ये भिन्न भिन्न अवतार में प्रकट होते हैं इस भौतिक जगत में, केवल वो थोड़ा बहुत अंश मात्र अपनी शक्ति, ऐश्वर्य, माधुर्य इत्यादि प्रकट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि राम कृष्ण जितने शक्तिशाली नहीं है। राम भी तो वही कृष्ण है, लेकिन जब श्री कृष्ण राम के रूप में प्रकट होते हैं तो केवल इतना ही शक्ति, इतना ही सौंदर्य, इतना ही माधुर्य प्रकट करते हैं। लेकिन जब श्री कृष्ण स्वतः आते हैं स्वयं, उस समय पूर्ण पुरुषोत्तम, मानो की पूर्णिमा का चांद, पूर्ण शक्तिमान, पूर्ण ऐश्वर्यमान, माधुर्य से पूर्ण, ये है श्री कृष्ण। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण और उनके भिन्न भिन्न अवतार और रूप, जो कि वास्तव में अभिन्न है भगवान से। तो भगवान और भगवान के वाणी में अंतर नहीं है, इसलिए भगवद गीता ये भी श्री कृष्ण का एक रूप है, वाणी रूप, पुस्तक रूप, ध्वनि रूप, ये भी श्री कृष्ण का एक अवतार है। अवतार मतलब क्या? जो भगवान के धाम से ये भौतिक जगत में उतर के आता है, भगवान का कोई रूप, उसको अवतार कहते हैं। तो भगवद गीता का जो संदेश है ये इस संसार का, इस जगत का उपदेश नहीं है, ये भगवान के धाम का संदेश है। यहां पर आकाशवाणी है ना, अब यहां आकाशवाणी दूरदर्शन में आप चालू करते हैं तो यहां की खबर वगैरह सुनाई देते हैं, लेकिन ये भगवद गीता में अगर आपने मन लगा दिया तो मानो आपके हृदय के रेडियो को या टीवी को आपने कहां तक लगा दिया? रेडियो वैकुंठ, रेडियो गोलोक वृंदावन, वहां से खबर आ रही है। आज की ताजा खबर क्या है? भगवान कहते मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाइव। क्या मतलब? कृष्ण कह रहे हैं मैं परम सत्य हूं, मुझसे बढ़कर कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है, सब कुछ मुझी पर आधारित है, जैसे कि एक धागे के ऊपर मणियां या मोतियां। तो आप बोलेंगे इसमें ताजा खबर क्या है, ये पहले से वही खबर है, आगे भी वही खबर होगी। लेकिन कृष्ण कथा या श्री कृष्ण से जो भी कुछ संबंधित है वो हमेशा नित्य नवनवायमान होता है, मतलब हमेशा ताजा रहता है, फ्रेश रहता है। आप अगर घर में कोई वर्तमान पत्र अखबार लेते हैं तो उसको क्या रोज पढ़ते हैं, रोज पाठ करते हैं? संपादकीय रोज पढ़ना कि कावेरी नदी का क्या झगड़ा चल रहा है, क्या रोज 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 पढ़ते हैं? नहीं, एक दिन आता है, अगले दिन बाजू में रख देते हैं और 6-7 महीने के बाद किसी को बेच देते हैं, कचरे में चला जाता है। लेकिन भगवान के धाम की जो खबर है वो हमेशा ताजी रहती है। हालांकि बात वही है लेकिन फिर भी बार बार सुनने से अच्छा लगता है, एक आनंद मिलता है। ऐसा नहीं कि भगवत गीता आज आपने पढ़ लिया और सोचेंगे कल से चलो गीता हमने पढ़ लिया अभी और क्या पढ़ना है। नहीं, जैसे प्रभुपाद बताया करते थे हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में, आप जप क्यों करते हैं, किसी ने उनको पूछा, उन्होंने कहा और जप करने के लिए। तो जप करने से हम ऊब नहीं जाते हैं, यह है आध्यात्मिक जगत। तो ये वाणी आध्यात्मिक जगत से आ रही है, स्वयं श्री कृष्ण इस वाणी को बोल रहे हैं। इसलिए भगवान, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर में हमेशा स्थित होते हैं, इसलिए उनमें और उनके वाणी में, उनके धाम में, उनके लीलाओं में, उनके सामग्री में कोई अंतर नहीं है। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, उसी तरह से उनकी वाणी भी अलग अलग अवतारों में प्रकट होती है। तो जिस अवतार, भगवत गीता के जिस अवतार को हम जानते हैं, वो अवतार का प्राकट्य 5000 वर्ष पूर्व हुआ और इस अवतार का जन्म दिवस हम आज मना रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण जब 5000 वर्ष पूर्व मथुरा में प्रकट हुए, वो उनका जन्मदिन है, लेकिन फिर भी हम रामनवमी मनाते हैं, वामन द्वादशी मनाते हैं, जब भगवान के अलग अलग अवतारों के आविर्भाव दिवस हैं। उसी तरह से हम तो केवल एक भगवद गीता को जानते हैं, जो कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 5000 वर्ष पूर्व सुनाया था। लेकिन क्या इसका मतलब है कि यही एकमात्र वाणी अवतार है भगवान का? नहीं, अनेक वाणी अवतार है भगवान श्री कृष्ण के। और भगवान श्री कृष्ण बताते भी हैं अर्जुन को, 4वें अध्याय में गीता में ही भगवत गीता के पूर्ण अवतारों की जानकारी दी है भगवान ने। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम् विवस्वान मन वे प्राह मनुर इक्ष्वाक वे ब्रवीत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैंने ये ज्ञान पहले विवस्वान को दिया था जो कि सूर्य देव हैं, और फिर सूर्य देव ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु उनको दिया। वैवस्वत मनु, उन्होंने उनके पुत्र राजा इक्ष्वाकु को यही ज्ञान दिया। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः। वो कहते हैं कि इसी तरह से परंपरा में ये ज्ञान चलते आया। किनकी परंपरा में? राज ऋषियों की परंपरा में। ऐसे ये ज्ञान, वही भगवत गीता पहले से चलते आ रहा है। सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। लेकिन इतने सारे सालों के बाद ये ज्ञान लुप्त हो गया, इसका खंडन हो गया, खंडित हो गया ये ज्ञान, इसलिए मैं पुनः स्थापित कर रहा हूं। ये अर्जुन, स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हेतदुत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, क्योंकि तुम मेरे नित्य भक्त हो, मेरे सखा हो, इसलिए मैं तुम्हें ये रहस्य, ये गीता का उपदेश पुनः दे रहा हूं। वही गीता का उपदेश है अर्जुन, जो मैंने पहले विवस्वान को सुनाया था। विवस्वान को सुनाए हुए कितने साल हुए? लाखों लाखों साल। तो स्वाभाविक है कि अर्जुन, जो कि श्री कृष्ण के मित्र थे, उनके सखा थे, उन्होंने सोचा कि अरे ये श्री कृष्ण तो मेरे हम उम्र के हैं, और उन्होंने कैसे विवस्वान को लाखों साल पहले ये गीता का उपदेश सुनाया। अपरो भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः। आपका तो जन्म अभी हुआ, विवस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ। कथम एतद् विजानीयम् तुम आदौ प्रोक्तवान इति, तो मैं ये कैसे समझ लूं कि आपने लाखों साल पहले यही ज्ञान विवस्वान सूर्यदेव को दिया था, जबकि हम दोनों एक ही उम्र के हैं। हमारे तो केवल 100 साल हो गए हैं, लेकिन आप लाखों साल पहले की बात करते हैं, ये कैसे संभव है? फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहूनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। वो कहता है कि कहते हैं कि हे अर्जुन, बहुत जन्म तुम्हारे हुए, मेरे भी हुए, लेकिन तुम में और मुझ में अंतर ये है कि तुम अपने पूर्व जन्मों को याद नहीं रख पाते हो, लेकिन मुझे मेरा हरेक पूर्व जन्म याद है। ऐसा क्यों? क्योंकि अर्जुन एक जीव है, जीवात्मा, जो कि सीमित है, जिसकी बुद्धि, जिसका ज्ञान काल इत्यादि से सीमित होता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण वो असीमित हैं, उनके लिए कोई बंधन कोई सीमा नहीं है, इसलिए वो याद रख सकते हैं। इस तरह से भगवद गीता का एक पहले अवतार का वर्णन हम भगवद गीता में सुनते हैं। तो उस अवतार में और इस अवतार में क्या अंतर है? मतलब वो भगवद गीता का अवतार जो कि लाखों साल पहले प्रकट हुआ विवस्वान के सामने, और ये गीता का अवतार जो कि हालांकि 5000 वर्ष पूर्व प्रकट हुआ, इन दोनों में अंतर क्या है? वैसे देखा जाए तो कोई अंतर नहीं, क्योंकि वही दिव्य ज्ञान है, वही ज्ञान आत्मा और शरीर का अंतर, आत्मा के लक्षण, भगवान का परिचय, अलग अलग योग पद्धतियां, इस संसार के बंधन का वर्णन, इस संसार के बंधन से कैसे मुक्त होना इसका वर्णन, भक्ति पथ का वर्णन, ये सब चीजें भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को भी सूर्यदेव को भी सुनाई थी। लेकिन अलग इस तरह से हो सकते हैं कि जिस रूप में हम इस ज्ञान को देखते हैं, 700 श्लोक 18 अध्याय, हो सकता है ठीक इसी रूप में प्रकट न हुआ हो, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे समझ लीजिए, पाठशाला में गणित के विद्यार्थी हैं और अलग अलग लेखक जो हैं वो 10वीं कक्षा के लिए पुस्तक लिखते हैं, गणित के लिए थोड़े अलग ढंग से लिखते हैं। किसी का मोटा किताब है, किसी का थोड़ा पतला किताब है, किसी किताब में 20 अध्याय हैं, किसी में 15 हैं। तो क्या ये किताब एक है या अलग है? एक दृष्टि से देखा जाए तो अलग है, लेकिन ज्ञान तो वही है। दोनों किताबों में यही बताया जाता है 2 और 2 4 है। ठीक उसी तरह से बाहरी रूप में शायद उस भगवद गीता का अवतार और इस भगवद गीता के अवतार में कोई अंतर हुए हो। शायद भगवान ने विवस्वान को ज्यादा ज्ञान दिया हो, लेकिन जो भी हो ज्ञान तो वही है। आध्यात्मिक ज्ञान कभी बदलता नहीं है। उस समय भी भगवान श्री कृष्ण ने विवस्वान को बताया कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। और इसी ज्ञान से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश करना आरंभ किया। लेकिन आजकल जो आधुनिक ज्ञान है, विज्ञान है, आजकल इनके सिद्धांत तो बदलते रहते हैं। आज वैज्ञानिक कहते हैं ये बात सत्य है, कई साल बाद कहेंगे नहीं नहीं हमने गलती की थी, ये नहीं, इस पे ऊपर सुधार किया है और अब नया सिद्धांत इस प्रकार है, और उसके कई साल बाद उस नए सिद्धांत को भी वो गलत साबित करते हैं और फिर तीसरा ही कोई नया सिद्धांत स्थापित करते हैं। इस तरह से आधुनिक भौतिक ज्ञान जो होता है वो सदा परिवर्तनशील रहता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, ये भगवद गीता का ज्ञान शाश्वत है, कभी बदलता नहीं है। उसका रूप बदल सकता है, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण अनेक अवतार में आते अलग रूप में आ सकते हैं, लेकिन है वो परम सत्य। ठीक उसी तरह से गीता का ज्ञान भी। तो ये 5000 वर्ष पूर्व जो ज्ञान अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिया, इसको भी हमें भगवान का ही एक रूप मानना चाहिए, भगवान का एक अवतार मानना चाहिए। और उनका प्राकट्य, उनका आविर्भाव हुआ इसी तिथि पर, इसलिए हम कहते हैं कि इस दिवस पर हम भगवद गीता का हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। हैप्पी क्यों, खुशी का मौका क्यों है? अगर गीता हमारे पास नहीं होती तो हमें कैसे पता चलता कि जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जीवन में कैसे रहना है, हमें मालूम नहीं पड़ता। इसलिए हमें चाहिए कि हम भगवद गीता का उपदेश ग्रहण करें अपने जीवन में। वैसे तो भगवद गीता सभी लोग जानते हैं, मतलब भगवद गीता के बारे में सभी लोग जानते हैं। भारतवर्ष में दुर्भाग्य की बात है, सभी लोग भगवद गीता के बारे में जानते हैं लेकिन भगवद गीता नहीं जानते हैं। और भी बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भगवद गीता को न जानते हुए भी सोचते हैं कि हम जानते हैं, यह सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है। एक बार एक व्यक्ति प्रभुपाद जी के पास आए थे, भारतीय व्यक्ति थे, तो उन्होंने प्रभुपाद से कहा, स्वामी जी मैं तो रोज गीता का पाठ 1.5 घंटे में कर देता हूं। तो प्रभुपाद ने देखा कि शायद इस व्यक्ति के हृदय में थोड़ा बहुत घमंड हो, तो प्रभुपाद ने तुरंत उत्तर दिया, वो अच्छी बात है कि आप भगवद गीता का पाठ 1.5 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन आप भगवद गीता 1.5 घंटे के लिए जी सकते हैं? कितनी महत्वपूर्ण बात है कि नहीं? पाठ करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, जिसको लिखना पढ़ना आता है वो पाठ कर देगा, लेकिन पाठ करना तो कैसे, किस तरह से गीता के आज्ञा आदेशों को हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। आप तोते को जानते हैं, तोते भी पाठ कर सकता है, आप तोते को भी भगवद गीता सिखा सकते हैं, दे नो उसमें निडा दे, वो भी बोलेगा इस तरह से, सारे श्लोक एक के बाद एक बोलेगा, 700 के 700 श्लोक शायद क्रम से वो ठीक से बोल पाएगा। लेकिन प्रभुपाद कहा करते थे, अचानक जाके तोते का गला पकड़ लो, फिर वो क्या कहेगा, देहिन उसमें यथा देह बोल रहा है, लेकिन बीच में का 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 शुरू करेगा, उस समय कृष्ण की वाणी को याद नहीं रख पाएगा, क्योंकि वो केवल उसने पाठ किया है, उसके जीवन में नहीं उतारा है। तो अगर कोई व्यक्ति तोते की तरह, पोपट की तरह केवल गीता का पाठ करता है, थोड़ा बहुत लाभ तो होगा, क्योंकि ये दिव्य वाणी है, इसका असर हृदय के ऊपर तो अवश्य पड़ेगा, लेकिन पूरा असर नहीं पड़ेगा। अगर गीता का पूरा पूरा लाभ हमें उठाना है तो हमें इसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो पाठ करने के साथ साथ यहां आदेशों का पालन करना चाहिए। अगर हमने आदेशों का पालन किया तो फिर हमारी चेतना बदल सकती है, दिव्य चेतना की प्राप्ति हो सकती है, और ऐसी दिव्य चेतना को प्राप्त करके हम इस भौतिक संसार से छूट कर जा सकते हैं। गीता गंगोदकम् पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। गीता ये भी गंगा जल के समान है, इसका जल, गंगा जी का जल जब पान करते हैं तो बहुत सारे पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं, लेकिन गीता का गंगा जल अगर हम पिएंगे, पुनर्जन्म हमें नहीं लेना होगा, हम जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा पाएंगे हमेशा के लिए। इसलिए बताया जाता है, भगवत गीता किंचित धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृत अपि येन मुरारी समर्चा, त्रियते तस्य यमेन न चर्चा। अगर हमने थोड़ा बहुत भी एक बार भी भगवद गीता हमने पढ़ा, गंगा जल का थोड़ा बहुत हमने पान किया, एक बार केवल यूं ही बड़ी गंभीरता से भी नहीं, लेकिन थोड़े बहुत आलसी ढंग से भी हमने मुरारी श्री कृष्ण की उपासना की तो क्या होगा, त्रियते तस्य, ये तीन चीजें करने से यमेन न चर्चा, मृत्यु के समय यमराज के साथ हमें वाद विवाद नहीं करना होगा। जब यमराज अपने यमदूतों को भेजेंगे हमारी आत्मा को छीन ले जाने के लिए नरक में जहां भी ले जाने के लिए, उस समय हर एक व्यक्ति वाद करता है, नहीं 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 अभी नहीं अभी नहीं, रॉन्ग नंबर आया तुम्हारा, हमारा नंबर नहीं उसका नंबर है, हमने कोई पाप नहीं किया उसने पाप किया है, मैं तो कितना पुण्यवान व्यक्ति हूं, मैंने सबका भला किया है। या तो फिर वाद करते हैं, नहीं नहीं और मुझे दो फैक्ट्री खोलनी है, नहीं ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ, तो उस समय वाद में अक्सर व्यक्ति हार जाता है। यमदूत किसी के नहीं सुनते हैं, वहां कोई रिश्वत ये वो कुछ नहीं चलता है, यहां किसी को कुछ चीज से बाहर निकलना है, आजकल संसार में बहुत सारी चीजें चलती है लेकिन यमदूतों के साथ ऐसा नहीं चलता है। लेकिन अगर हमने गीता का पाठ किया, गीता को अपने जीवन में उतारा, भगवान श्री कृष्ण के हम भक्त बन गए, तो हमें कभी यमदूतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि मृत्यु के समय विष्णुदूत हमें ले जाने आएंगे विष्णुलोक, वैकुंठ भगवान के धाम में। पुनर्जन्म न विद्यते, जहां कोई मरण नहीं, कोई जन्म नहीं, बुढ़ापा नहीं, बीमारी नहीं, ऐसे स्थान में कौन नहीं जाना चाहेगा। और इस स्थान में जाने के लिए हमें भगवद गीता का आश्रय लेना चाहिए। वैसे आश्रय लेने का मतलब केवल बाहरी रूप से नहीं है, हृदय से। ये कहानी प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे, इसलिए आज के दिन ये कहना उपयुक्त है, क्योंकि भगवद गीता को हमें कैसे समझना चाहिए ये हम जान सकते हैं। वैसे कई कहानियां हैं, हो सकता है एक या दो छोटी छोटी कहानियां आपको सुनाएंगे। एक बार एक ब्राह्मण था, वो रोज बैठकर अपने घर के सामने गीता का पाठ किया करता था, और गीता के साथ साथ अन्य कई शास्त्र थे, और उसको कंठस्थ थे। सुबह बैठता था, अपना पीठ हिलाते हिलाते बड़े स्वर में वो इन मंत्रों का उच्चारण करता था, लेकिन पाठ तो करता था लेकिन उसका ध्यान कहाँ था, उसकी नजर हमेशा सामने वाले घर में रहती थी। सामने वाले घर में एक वेश्या रहा करती थी। अब उसके घर में बहुत सारे लोग आते जाते थे, लेकिन ये वेश्या जो है वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। परिस्थिति के हिसाब से ऐसे आ गई होगी, लेकिन हृदय में हमेशा श्री कृष्ण का स्मरण करती थी। तो ये ब्राह्मण जो है वो वहां देखा करता था, कौन आया कौन गया, लेकिन वो वेश्या जो थी वो हमेशा मन ही मन में कृष्ण का स्मरण करती थी। तो एक दिन यमदूत आए, भयंकर, दिखने में भयंकर होते हैं, हम सब ने देखा है यमदूतों को पिछले जन्मों में, लेकिन हम याद नहीं रख सकते हैं, ये भगवान की कृपा है। कई लोग पूछते हैं कि क्या सबूत है कि हमारा पूर्व जन्म था, सबूत तो बहुत कुछ है लेकिन जवाब तो इतना ही है कि भगवान की कृपा है कि हमारे अंदर पूर्व जन्म की याददाश्त नहीं है। अगर याद होती तो हमें यमदूतों को का स्मरण करना पड़ता, कितने भयंकर होते हैं यमदूत। एक हमारे संस्था के भक्त हैं जो बहुत अच्छे चित्र निकालते हैं, और उन्होंने श्रीमद् भागवत के छठे स्कंध में जो अजामिल की लीला है उसका चित्र उन्होंने निकाला था, जो श्रीमद् भागवत के पन्नों में आप देख सकते हैं। अजामिल जो है बूढ़ा आदमी था, बड़ा पापी था, और अपने मृत्यु के शैया पर लेटा हुआ था, और उस समय यमदूत उसके आत्मा को लेने के लिए आए थे, और जैसे ही यमदूत सामने आए तो अजामिल बहुत घबरा गया, और उसका पुत्र का नाम दैव से नारायण था, तो उसने जोर से नारायण पुकारा। उस समय विष्णुदूत भी सामने आए, लेकिन जब पहली बार अजामिल ने यमदूतों को देखा इतना घबरा गया कि ऐसी भीति जो है, ऐसा भय संसार में और कभी नहीं हो सकता। तो इस चित्रकार के पिताजी जो थे वो भक्त नहीं थे। तो जब उनके मृत्यु का समय करीब आया तो वो अपने पत्नी को कहने लगे बड़े घबरा कर, वो बंदूक लाओ, बंदूक लाओ। बोल रही थी, क्या बंदूक से क्या करोगे? तो उनको मार डालूंगा। किनको मार डालोगे? वो जो वहां खड़े हैं, कौन खड़े हैं? कोई नहीं है। हाँ हाँ, वही जो हमारे लड़के की किताब में जिसने वो चित्र निकाला था, वही लोग आया है मुझे लेने के लिए। तो इतने अच्छे ढंग से उस भक्त ने चित्र निकाला था, और उस बेटे ने, उस भक्त ने पिताजी को, माताजी को दिखाया होगा, देखो ये मेरे चित्र है, ये किताब है, हमारे गुरु महाराज ने लिखे हुए हैं, तात्पर्य दिया हुआ है इसमें। तो पिताजी ने देखे थे, लेकिन नास्तिक थे, विश्वास नहीं किया। ठीक है, बेटा कर रहा है, करने दो, क्या कर सकते हैं। लेकिन आज उनको उन यमदूतों का दर्शन हुआ, और उन्होंने कहा कि वही लोग जो पीटर के किताब में थे, वही आए हैं मेरे पास, बंदूक दो दो, मुझे बंदूक दे दो। इस तरह से हरेक व्यक्ति जो पापी है उसने मृत्यु के समय यमदूतों का दर्शन किया है। अभी हमारे हरेक के न जाने कितने जन्म बीत गए होंगे इस भौतिक जगत में, और ऐसा नहीं है कि हरेक जन्म में हम भक्त थे। हो सकता है किसी एक मनुष्य जन्म में हमने बहुत सारे पाप किए होंगे, बड़े पापी थे हम, हो सकता है, और उस जन्म में अवश्य यमदूत हमारे ऊपर छा गए होंगे, और उस समय हमने देखा होगा उनको। अब इतने सारे जन्मों में बार बार यमदूतों का दर्शन अगर एक साथ हमारी याद में आ जाता तो हमारी क्या दशा होती। इसलिए भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे मन से उन्होंने पूर्व जन्मों की याददाश्त जो है बिल्कुल मिटा दी है। तो इस तरह से पूर्व जन्म जो ये यमदूत वहां पर आ गए, और ये ब्राह्मण ने उनका दर्शन किया, और ब्राह्मण ने देखा, आश्चर्यचकित हो गया कि अरे मेरे पास यमदूत, ये कैसे हो सकता है? मैं तो बड़ा ब्राह्मण हूं, पुण्यवान हूं, पूजा पाठ करता हूं, मुझे गीता कंठस्थ है। फिर वाद करना शुरू किया उस ब्राह्मण ने, अरे मेरे पास क्यों आए? गलती से तुम गलत जगह पर चले आए, शायद उस घर में जाना चाहिए था, सामने वाले घर में। तो यमदूतों ने इधर देखा, उधर देखा, अपने खाता देखा, बोला नहीं, पता तो सही है, हम सही जगह आए हैं, तुम्हारा नाम ये है ना? हाँ ये है, तुम ब्राह्मण हो ऐसे? हाँ ठीक है, उसका पता तो नहीं है हमारे पास। अरे वो तो हम उसके पास नहीं जा सकते, हमारे साहब ने बोला है, यमराज ने, कि उसको तो वैकुंठ जाना है, लेकिन तुम्हें यहाँ नरक में जाना है। अरे ये क्या, वो है वेश्या, वो जाएगी वैकुंठ, और मैं ब्राह्मण पूजा पाठ करने वाला, मैं जाऊंगा नरक, ये कैसे? तो उन्होंने कहा कि देखो ये चेतना की बात है। कैसे? तुम्हारी चेतना कहां पर है? जहां उसकी चेतना होनी चाहिए थी। और उसकी चेतना कहां है? जहां तुम्हारी चेतना होनी चाहिए थी। मतलब तुम ब्राह्मण हो, पूजा पाठ करते हो, तुम्हें भगवान श्री कृष्ण का नित्य स्मरण करना चाहिए था, लेकिन कृष्ण का स्मरण करने के बजाय पूजा पाठ करते करते तुम्हारी दृष्टि वहीं पर थी। लेकिन वो जो वेश्या है, पाप कर रही थी, पतित है, लेकिन फिर भी हृदय में हमेशा भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रही थी, जो कि तुम्हें करना चाहिए था। और जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का नाम लेता है, सतत स्मरण करता है, वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानिहीन मे भक्तः प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, सब जगह जाके घोषणा कर लो कि मेरे भक्त का नाश कभी नहीं होता है। और जो व्यक्ति बड़ा पापी भी क्यों न हो, अगर वो मेरा भक्त बन जाता है, मेरा नित्य स्मरण करता है, तो बहुत जल्द ही क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो एक धर्मात्मा बन जाता है। अभिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक् व्यवसितो हि सः। गीता के 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति गलती से पाप भी करे अनायास, लेकिन वो अनन्य भाव से मेरा भजन करते रहता है, कभी मेरे चरण कमलों को छोड़ता नहीं है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को साधु ही मानता हूं हे अर्जुन, क्योंकि उसकी चेतना सही है, वो सही जगह में स्थित है। इसका मतलब ये नहीं क्या कि हम पाप करते रहें और सोचेंगे हम भगवान के भक्त हैं तो अभी भी भगवान हमको साधु मानेंगे, ये चेतना नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी चेतना सही नहीं है। जो वो वेश्या थी वो सोच रही थी कि मैं वास्तव में बहुत पापी हूं, बहुत पतित हूं, लेकिन वो स्मरण कर रही थी हृदय से तीव्रता से, उसने अपनी चेतना को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में आश्रित कर दिया था। इस तरह से भगवत गीता का पाठ करना, इसका मतलब है कि इसको पाठ करके इसको समझने का प्रयास करना और इसमें जो आज्ञा दी है, जो उपदेश दिए हैं, इनको अपने जीवन में उतारना। कई बार भक्त पूछते हैं, कितने सारे भक्त पूछते हैं कि हम तो भगवत गीता इत्यादि पढ़ने का प्रयत्न करते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, क्या करें? तो इसके लिए उत्तर क्या है, कोई बता सकते हैं क्या इसके उपाय है? कोई भक्त कहता है कि मैं भगवत गीता पढ़ने का प्रयास तो करता हूं लेकिन समझ नहीं पाता, क्या उपाय? जिन्होंने समझा है उनसे समझना चाहिए, सही बात है, लेकिन फिर भी समझाने वाले तो 24 घंटे हमारे साथ नहीं रह सकते, तो क्या करें? जिस समय हम भक्त के साथ हैं हम पढ़ें, बाकी समय नहीं पढ़ें, क्या करें? पढ़ते रहना चाहिए, सही उत्तर है। अगर हमारी भावना सही रही, भले ही हमने गीता के हर एक श्लोक को समझा हो या नहीं समझा या थोड़ा समझा, लेकिन फिर भी हमें पढ़ते रहना चाहिए और अंदर ही अंदर से भगवान हमें प्रेरणा देंगे, वो ज्ञान देंगे। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सतत मेरी सेवा में युक्त रहते हैं और प्रीति से भक्ति भाव से मेरी सेवा करते रहते, मेरा भजन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मैं अंदर से हृदय से मैं मार्गदर्शन करता हूं कि कैसे वो मुझे प्राप्त कर सकेंगे। तो भगवान की प्राप्ति करना ये कोई बुद्धि की बात नहीं है, ये भक्ति की बात है। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। वो कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल भक्ति से तुम मुझे जान पाओगे और भक्ति करने से फिर तुम मेरे धाम में प्रवेश कर पाओगे। तो यहां बुद्धि की बात नहीं है, शिक्षण की बात नहीं है। कोई शिक्षित हो अशिक्षित हो, किसकी बुद्धि बहुत तेज हो किसकी अल्प बुद्धि हो, ये भौतिक चीजें हैं, लेकिन भक्ति के लिए भौतिक चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति के लिए क्या चाहिए? हृदय, भावना। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में गए थे श्रीरंगम क्षेत्र में, जहां रंगनाथ जी का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पे एक ब्राह्मण वहां बैठकर गीता का पाठ करते थे रोज, और क्योंकि वो ज्यादा शिक्षित नहीं थे, मंत्रों के श्लोकों के उच्चारण में ज्यादा वो निपुण प्रवीण नहीं थे, तो दूसरे ब्राह्मण उनका मजाक उड़ाया करते थे, लेकिन ये ब्राह्मण जो है कभी भी विचलित नहीं होते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम पढ़ना नहीं जानते, श्लोकों का उच्चारण भी सही ढंग से नहीं कर सक पा रहे हो और इनका अर्थ भी नहीं समझ पा रहे हो, फिर भी तुम रोज यहां बैठकर इतने घंटे बैठकर गीता पढ़ते हो, इसका क्या कारण है? तो उस ब्राह्मण ने कहा कि मैं तो एक शिष्य हूं, मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि तुम बैठ के यहां रोज गीता का पाठ करना, और इसलिए उनके आदेशानुसार मैं यहां बैठता हूं और गीता का पाठ करता हूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या पढ़ रहा हूं, उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मेरे गुरु का आदेश है, मैं पालन कर रहा हूं, इसलिए मैं रोज पढ़ता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि अरे ब्राह्मण, ये ठीक है, ये बात मैं समझ गया, तो कि तुम गुरु का आदेश का पालन कर रहे हो और गीता का पाठ रोज करते हो, लेकिन जब तुम ये गीता के उपदेश को समझ नहीं पा रहे हो तो तुम्हारे आंखों में आंसू कैसे, इसका क्या कारण है? तो उस ब्राह्मण ने कहा, हां ये सही है कि मैं गीता का उपदेश समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन जैसे जैसे मैं गीता के श्लोक पढ़ता हूं एक के बाद एक, मुझे स्मरण आता है वो बड़ा सुंदर दृश्य, मनमोहक दृश्य, हृदय को स्पर्श करने वाला दृश्य, कि भगवान श्री कृष्ण जो कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के उद्गम हैं, सारे प्राणियों के स्वामी हैं, वो अपने भक्त अर्जुन के सारथी बने हैं, उनके दास बने हैं, उनके हर आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जब अर्जुन उनको कहते हैं इधर जाओ तो उधर जाते हैं, रोको तो वो रोकते हैं, तेज भगाओ तेज भगाते हैं। तो ये कितने कृपालु हैं भगवान। देखिए भक्त और भगवान के बीच में, अर्जुन और कृष्ण के बीच में प्रेम का संबंध, भक्ति भावना कितनी तीव्र है कि स्वयं भगवान अपने भक्त के नौकर बन गए हैं। तो जब इस बात का स्मरण मुझे आता है, मेरा हृदय उभर आता है भक्ति भावना से, और इसलिए मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने उस ब्राह्मण का को आलिंगन किया और कहा कि तुम ही वास्तविक ब्राह्मण हो, क्योंकि तुमने ही सही भगवद गीता का संदेश समझ लिया है, और ये अन्य ब्राह्मण हैं जो तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, ये केवल तोते की तरह बोल रहे हैं, सारे श्लोक जानते हैं, उच्चारण बड़ा उच्चारण करने में प्रवीण है, लेकिन उसका सार उसका उद्देश्य नहीं मालूम, इसलिए तुम्हें मैं सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण मानता हूं, क्योंकि तुमने गीता के उद्देश्य को, गीता के सार को समझ लिया है। तो गीता का सार क्या है? गीता का सार है भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना। भगवत गीता क्या केवल अर्जुन का उपदेश था? नहीं, हम सबके लिए था। कृष्ण कृपा करी अर्जुन रक्ष लक्ष्य कोरिया जगत राखियाचेन उपदेश दिया। चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को लक्ष्य बनाया, उनको गीता का उपदेश दिया और अर्जुन को निमित्त बनाकर सारे जगत का संरक्षण किया। अगर ये महाभारत का युद्ध न होता, अगर अर्जुन वहां न होते, तो भगवद गीता नहीं होती। जगत का संरक्षण कैसे होता, जगत का मार्गदर्शन कैसे होता, हमें दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त होता? इसका मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल एक निमित्त बनाया। ये भगवद गीता केवल अर्जुन के लिए नहीं, सारे जगत के लिए है। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि अरे भगवान ने 5000 वर्ष पूर्व ये संदेश ये उपदेश अर्जुन को दिया था, लेकिन आजकल का जमाना अलग है, आजकल टीवी कंप्यूटर और मोबाइल का जमाना है, इसमें वो पुराने ज्ञान से हमें क्या लेना देना। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत तो आज है इस ज्ञान की, क्योंकि लोग सबसे ज्यादा दुखी आज हैं। इतना सब होते हुए भी, या कह सकते हैं इतना सब होने की वजह से वो दुखी है, होने के बावजूद नहीं, होने की वजह से ये सब इतने लोग दुखी हैं। इन्होंने भगवान को त्याग दिया है। तो पुनः हमें ये भगवत चेतना वापस लानी है। कई लोग कह सकते हैं जब इतने सारे शास्त्र हैं तो आपको गीता ही क्यों चुनते हैं आप? क्योंकि गीता सबसे सरल शास्त्र है, सबसे सरल से सरल भाषा में भगवान श्री कृष्ण ने ऊंचे से ऊंचा ज्ञान दिया है। लेकिन अन्य जो शास्त्र हैं जैसे उपनिषद इत्यादि, इनको समझना बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन गीता ये सारे शास्त्रों का सार है। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन, सारे उपनिषद अगर एक गाय है और गीता ये उसका दूध है। सर्व उपनिषद गावो दुग्धा गोपाल नंदन, और दूध निकालने वाला कौन है? वो है गोपाल, गोपाल नंदन श्री कृष्ण। पार्थो वत्स है सुधीर भोक्त, और जो संत महात्मा ऋषि मुनि हैं, भगवान के भक्त हैं, जो सुधीर हैं भोक्ता, वो भी उस दूध का भोग करते हैं, इसका पान करते हैं। गीतामृतम महत, ये गीता ये अमृत है, महान अमृत है ये गीता की वाणी। सही अमृत क्या है? वो है जो हमें अमृत बना सकता है, अमृत जो हमको मृत्यु से परे ले जा सकता है। आपको समुद्र मंथन की कथा तो मालूम है, देवताओं ने और असुरों ने समुद्र का मंथन किया अमृत निकालने के लिए, लेकिन वो अमृत इस जगत का अमृत है। उस अमृत का पान करने से हम वास्तव में अमृत नहीं हो सकते, मृत्यु के पार हम नहीं हो सकते हैं। आजकल लोग उस अमृत के पीछे भी नहीं जाते, यहाँ पास में जो अमृत मिलता है उसका पान करने जाते हैं ज्यादा, खास करके बेलगाम में इस अमृत का के प्रिय बहुत लोग हैं, तो ये सोचते ये चीज अमृत है और इसके पीछे लगते हैं। लेकिन असली अमृत तो है जो हमें जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा दिला सके, अमृत। इसलिए गीता का संदेश ये सही अमृत है। और यहां बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं आ गए हैं गोपाल के रूप में, और इन सारे शास्त्रों को जो कि गाय रूप में है इनका दोहन कर रहे हैं, दूध निकाल रहे हैं, और ये दूध ये अमृत गीता का उपदेश है। वो वत्स अर्जुन इसका पान कर रहा है, इसको सुन रहा है उपदेश को। कई लोग ऐसे तर्क करते हैं कि गाय का दूध जो होता है वो तो केवल उसके बछड़े के लिए होता है, तो मनुष्य को दूध नहीं पीना चाहिए गाय का, ये पाप है। दूसरी ओर कई लोग होते हैं जो गाय की ही हत्या करते हैं। ऐसे अलग अलग विचार धारणाओं के लोग रहते हैं, लेकिन सही बात क्या है? हाँ, सही बात ये है अवश्य कि वत्स जो बछड़ा होता है उसका पहला अधिकार होता है गाय के दूध के ऊपर, परंतु ये सर्वविदित बात है, खास करके जो लोग गाय की सेवा करते हैं वो जानते हैं कि गाय के बछड़े को जितने दूध की आवश्यकता होती है उससे ज्यादा दूध का उत्पादन गाय देती है। और यहां तक कि अगर वो गाय का बछड़ा गाय ने दिया हुआ सारा दूध पी ले तो उसका पेट खराब हो जाएगा, उसे डायरिया हो जाएगा, बीमार पड़ जाएगा, कभी कभी बहुत बीमार पड़ जाता है। इसलिए जितना केवल उसको आवश्यक है उतना ही गाय के बछड़े को लेना चाहिए, बाकी मनुष्य के लिए है। ऐसे भगवान ने सृष्टि की रचना की है, गाय का दूध जो है ये मनुष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ आहार है, न केवल शरीर को पोषण करता है लेकिन बुद्धि को भी। मस्तिष्क में जो हमारे सेल है उनको भी वो सूक्ष्म बनाता है, आध्यात्मिक जीवन की ओर हमारा आकर्षण बढ़ाता है। इसलिए प्रभुपाद कहा करते थे कि अगर आपको आध्यात्मिक जीवन की ओर आकर्षण बढ़ाना है गाय का दूध पीजिए। तो कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि केवल गाय के बछड़े के लिए होना चाहिए, लेकिन बात तो यह है कि गाय बहुत दूध देती है इसलिए हम सब भी पी सकते हैं। ठीक उसी तरह से कई लोग तर्क करते हैं कि ये गीता का उपदेश कृष्ण ने दिया वो तो केवल अर्जुन के लिए था, हमारे लिए नहीं, हमारा देश काल सब अलग है। लेकिन नहीं, भगवान कृष्ण ने जो दूध का पान अमृत का पान अर्जुन को कराया वो बछड़े हैं, उन्होंने पी लिया, जितना पीना था संतुष्ट हो गए, बाकी हम सबके लिए है। और सर्वोपनिषदो गावो, ये जो गाय है ये कोई साधारण गाय नहीं है, कई ऐसे गाय होते हैं जिनको सुरभि कहते हैं। सुरभि गाय के लक्षण क्या होते हैं किसी को मालूम है? सुरभि गाय क्या कर सकती है? असीमित मात्रा में दूध दे सकती है, जितना चाहे उतना दूध। तो ये सर्वोपनिषद गावोई जो गीता है, ये अमृत, ये दूध ऐसा दे सकती है असीमित, केवल अर्जुन के लिए नहीं, सभी के लिए। इसलिए हमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए कि वो पहले बताया था हमारे लिए नहीं है। नहीं, गीता का ज्ञान हम सबके लिए है। और अर्जुन ने जब ये दूध का पान, अमृत का पान किया, तो अर्जुन पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का संदेश समाप्त किया तो अर्जुन से पूछा कि अर्जुन, मैंने जो तुम्हें बताया है क्या तुमने ध्यान से सुना? क्या तुमने समझ लिया? क्या तुम्हारे सारे संदेह संशय दूर हो गए? फिर अर्जुन ने अपना आखिरी श्लोक कहा भगवत गीता में, नष्ट मोहो स्मृति लब्धा। उन्होंने कहा, नष्ट मोह, मेरा मोह जो है वो नष्ट हो गया। स्मृति लब्धा, मेरी स्मृति शक्ति जो मेरा स्मरण है फिर से आ गया है। स्थितोस्मि गत संदेह, मैं स्थित हो गया हूं ऐसे स्थान में जहां मेरी स्मृति आ गई है वापस, और मेरे संदेह दूर हो गए हैं। अभी मुझे कोई चिंता नहीं है। त्वत्प्रसादात्मयाच्युत, केवल ये आपकी कृपा से है, आपके प्रसाद से, हे अच्युत, हे कृष्ण। इसलिए करिष्ये वचनम तव, अब आप जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूं। इसका मतलब है कि गीता पाठ करने का, गीता पढ़ने का, गीता को अपने जीवन में उतारने का मतलब ये है, करिष्ये वचनम तव। जैसे अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, जो आप कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूं। इसको कहते हैं शरणागति। तो भगवत गीता शरणागति के स्तर तक हमें ले जाती है। पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के शरण में कैसे जाना? कई टीकाकार वगैरह होते हैं, ज्यादातर भारतवर्ष में लोग ऐसे ही टीका करते हैं, ऐसे ही गीता को समझते हैं। वो सोचते हैं कि गीता का सार है कौन सा श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते महाफलेषु। महाफलेषु कदाचन भी नहीं बोलेंगे, केवल पहला लाइन, क्योंकि महाफलेषु कदाचन मतलब कर्मों के फल से दूर होना चाहिए, वो बहुत कठिन है। केवल कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, लेकिन ये गीता का सार नहीं है। गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सारे धर्मों को त्याग दो, केवल मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो नहीं। मन मना भव मद भक्त मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैशसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। हे अर्जुन, हमेशा मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मेरी सेवा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा करने से निस्संदेह निश्चित ही तुम मेरे पास लौट कर आओगे। तो भगवान के शरण में जाना, शरण में जाकर उनके आज्ञा का पालन करना, और उनकी आज्ञा क्या है कि मेरा भक्त बनो। इसका मतलब है कि भगवत गीता का सार, भगवत गीता का उपदेश इसी बात में है कि हम श्री कृष्ण के भक्त हो जाएं। इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है भगवत गीता का। और भक्त कौन होता है? जो भगवान से प्रेम करता है, जो भगवान की सेवा करता है। इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए उनका नाम संकीर्तन ही सबसे आसान मार्ग है। भगवान जानते हैं कि कलयुग में इतनी भ्रांति है कि लोगों को धर्म का पालन करना बहुत कठिन हो जाता है। तो जो व्यक्ति गीता को समझता है वो जानेगा कि ये भगवत गीता है कि भगवद गीता जो है सारे जगत के जगत को धर्म के मार्ग पे लगाने वाला ग्रंथ है। गीता महात्म्य में बताया है, एको शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, एको देव की पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। गीता महात्म्य बताया है कि बहुत सारे शास्त्र हैं, लेकिन ये भगवद गीता ये एकमात्र शास्त्र, इसको स्वीकार करो तो सारा जगत जो है वो एक हो सकता है। कई लोग ये शोक व्रत करते हैं कि देखो हर एक धर्म में एक ही शास्त्र है, इस्लाम में कुरान है, ईसाई धर्म में बाइबल है, सिख धर्म में गुरु ग्रंथ साहिब है, और जो पारसी धर्म है उसमें जैन अवस्था है, ऐसे जितने भी सारे धर्म हैं उनमें एक एक ग्रंथ है। वो कहते हैं कि वे हमारे धर्म में इतने सारे ग्रंथ हैं कि हमें समझ में नहीं आता ये क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर इसका उपाय बताया हुआ है। क्या है उपाय? एकम शास्त्रम देव की पुत्र गीतम, कि एक ही शास्त्र को स्वीकार करो, कोई समस्या नहीं है। वो कौन सा शास्त्र? देव की पुत्र गीतम, श्री कृष्ण की गीता, भगवत गीता। और दूसरी बात जो लोग कहते हैं, करे बाकी धर्मों में देखो, उनके यहाँ केवल अल्लाह, इनके यहाँ केवल जीसस, इनके यहाँ केवल ये, लेकिन हमारे यहाँ कितने सारे भगवान। अभी हर एक बोलता है हम गणपति में जाए हम की सेवा करेंगे, कोई बोलता है हम इनकी सेवा करेंगे, तो क्या करना चाहिए? तो यहाँ बताया गया है एको देवो देव की पुत्र एव, कि कोई समस्या नहीं, एक भगवान को मानो, कृष्ण जो देव के पुत्र हैं वो वास्तव में भगवान हैं, अन्य सब जो हैं वो उनके अंश हैं। समस्याओं का समाधान। और फिर कई लोग बोलते हैं ये भी समस्या है कि कितने सारे मंत्र हैं, कोई बोलता है गण गणपताय नमः, कोई बोलता है ओम नमो शिवाय, आप कुछ और बोलते हैं, कौन सा मंत्र करना चाहिए? तो गीता महात्म्य में बताया गया है एको मंत्रस्तस्य नामानि एव, केवल भगवान श्री कृष्ण के नामों का कीर्तन हमें करना चाहिए, खास करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर कई लोग कहते हैं हमको इतने सारे कार्य हैं, हमको समय नहीं मिलता। तो गीता महात्म्य में बताया जाता है कर्म आपि एकम तस्य देवस्य सेवा, जो भी कार्य आप करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा समझ के करो, भगवान श्री कृष्ण को अपने कर्मों का फल अर्पण करो। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया है कि उनकी सेवा करते करते हमारे दैनिक जीवन में हमें कैसे रहना चाहिए, हमें कर्मों का फल भगवान को अर्पण करना चाहिए, हमारे दैनिक कार्यकलाप केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, समझना चाहिए कि हम केवल निमित्त हैं, हम सेवक हैं और श्री कृष्ण हमारे नित्य आराध्य प्राणेश्वर हैं। ये है गीता का संदेश। तो आज अगर हमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी रूप भगवत गीता को प्रसन्न करना है, क्योंकि ये भी भगवान के अवतार हैं, तो हमें भी श्री कृष्ण का भक्त होना चाहिए, बड़े भक्ति भाव से, आतुरता से, गंभीरता से श्री कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगा देना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, कीर्तन करना, भक्तों के संग में आना, भगवान के यहां मंदिर में और घर में भी अलग अलग तरह की सेवा करना, यही भक्ति मार्ग है, बहुत आसान। और खास करके भगवद गीता की सेवा अगर हमें करनी है तो हम इस पुस्तक का वितरण कर सकते हैं। जो ज्ञान जो लाभ हमें यहां भगवद गीता से मिला है वो हमें दूसरों को भी देना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में जितना हम धन बांटते हैं उतना हमारा धन बढ़ जाता है। भौतिक जीवन में क्या होता है, हमारे पास 100 रुपए अगर हैं, हमने 50 किसी को दे दिए तो हमारे पास केवल 50 रह जाते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में ऐसा नहीं है। हमने जो भक्ति में धन, आध्यात्मिक धन प्राप्त कर लिया है, जो ज्ञान, जो प्रेरणा हमने प्राप्त की है, अगर हमने इसको दूसरों को दिया वो भी धनी हो जाएंगे और हमारा धन भी बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन संस्था में ये एक पद्धति चालू कर दी कि हर दिसंबर महीने में सारे भक्त उनके पुस्तकों का वितरण करते हैं। यहां भी राधा गोकुलन मंदिर में, जैसे आप जानते हैं, पुस्तक वितरण का कार्य चल रहा है, खास करके भगवत गीता। भक्तों ने संकल्प लिया है कि 22,000 भगवत गीता एक महीने में बांटे जाएंगे। आज 15 दिन हो गए दिसंबर के, आधा महीना बीत गया और ठीक 11,000 किताब बांटे हैं अभी तक। वो सब आप सबकी सेवा से, क्योंकि आप सब ने इतना परिश्रम किया, कितने सारे भक्त जगह जगह घूम रहे हैं, बहुत कष्ट ले रहे हैं। आज भी बहुत सारे भक्त पुस्तक वितरण करने के लिए गांव में गए हैं, माताजी लोग भी गए हैं, बच्चे भी गए हैं, बूढ़े भी गए हैं, सब गए हैं। तो अब 15 दिन बाकी है, आधा महीना हो गया और आधा टारगेट हो गया, तो अभी और केवल 11,000 बांटने हैं। कठिन नहीं है? कठिन है नहीं। अगर हमने इस भावना से बांटा कि ये गीता का भेद दूसरों को करने से ये परम कल्याण उनके जीवन में हम प्रदान कर रहे हैं, तो भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न होंगे हमारे ऊपर। कितने भक्तों ने अपने अनुभव बताए हैं, आश्चर्य। एक एक भक्त को कितने सारे साक्षात्कार होते हैं पुस्तक वितरण करने में, एक एक भक्त कितने अलग अलग अनुभव होते हैं, कितना आनंद उनको मिलता है। आप में से जो भी पुस्तक वितरण के लिए गए हों, घर घर, जगह जगह, आपका भी अनुभव ऐसे ही होगा। 10 लोगों में से हो सकता 8 लोग नहीं लें और 2 लोग ले लें, लेकिन इन 2 लोगों के लेने से जो हमें आनंद आता है वो उसकी तुलना नहीं है। कितने लोग पहले लेना नहीं चाहते, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, किसी न किसी तरह से उनको किताब का स्पर्श कराना चाहिए। हाथ में थमा दीजिए, पहले उनको हाथ में लेने दीजिए गीता, चित्र देखने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण को देखेंगे, भगवत गीता को हाथ में लेंगे, फिर भगवान श्री कृष्ण उनके हृदय में हैं, शायद वो उनको प्रेरणा दे दें कि चलो इसको हमें लेना है। सुंदर चित्र दिखाइए और 2 शब्द बोलिए तो शायद वो ले लेंगे। अलग अलग भक्तों ने बताया कि कितने क्रिश्चियन लोगों ने, मुसलमान लोगों ने भी लिया है, केवल हिंदू लोगों ने नहीं। इस तरह से ये गीता ये कोई किसी एक पंथ का ज्ञान नहीं है, ये एक किसी सांप्रदायिक ज्ञान नहीं है, ये सारे विश्व के कल्याण के लिए ज्ञान है। ये सनातन धर्म है, हर एक जीव का धर्म है। ऐसा नहीं कि केवल वैष्णवों का है, केवल हिंदुओं का है, भारतीयों का है, नहीं, सबके लिए है ये। इसलिए बिना कोई भेदभाव किए हम ये गीता का वितरण इस महीने में ज्यादा से ज्यादा हम कर सकेंगे, तो भगवान श्री कृष्ण और श्रील प्रभुपाद बड़े प्रसन्न होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आपके कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। भगवद गीता वितरण करते समय हमें किसी ने यह प्रश्न पूछा कि भगवद गीता के ऊपर युद्ध का चित्र है तो इसे हम अपने घर कैसे रखें, इसका जवाब कैसे देना था। ये हम तो नहीं जानते थे, लेकिन कृपया आप हमें इसका सही जवाब दे सकते हैं। हाँ, ये कई बार लोग तर्क करते हैं। एक भक्त बता रहे थे कि वो एक आदमी के पास गए, कौन याद नहीं आ रहा कौन बता रहे थे, लेकिन कोई भक्त ने बताया कि किसी को उन्होंने दिया दिखाया भगवत गीता। उन्होंने कहा नहीं 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 हम ये इसको छूए मत, इसको ले जाइए। क्यों? अरे हमारे घर में रखेंगे तो भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाएगा। कोई बोलते हैं एक बार हमने किसी को भेंट दी थी वो कृष्ण अर्जुन का चित्र जो यहाँ पर है सामने, इसी तरह का और एक छोटा चित्र था पोस्टर, तो उन्होंने घर में लगाया और फिर कितने सारे लोगों ने आके उनको टोका, अरे अरे क्या करते हो, ये चित्र तुमने लगाया तुम्हारे घर में महाभारत हो जाएगा। लेकिन ये सब अज्ञान है, घोर अंधकार। भगवान श्री कृष्ण जहां हैं और जहां उनके भक्त अर्जुन हैं, वहां कोई अशुभ चीज कैसे हो सकती है? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। भगवद गीता का आखिरी श्लोक है कि जहां योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहां पर धनुर्धर गांडीव भाण धारण करने वाले अर्जुन हैं, तत्र उस जगह है, श्री मतलब ऐश्वर्य विजय जीत, श्री विजय भूति शक्ति तेज, ये नीति, ये सब अवश्य वहां पर होंगे। तो वहां पर ऐसे दुर्घटना कैसे होगी? और अगर भी कोई दुर्घटना हुई तो वो उसके कर्मों के हिसाब से हुआ, ये फोटो वहां लगाने की वजह से नहीं। शायद अगर फोटो नहीं लगाया होता तो और ज्यादा डबल दुर्घटना हुई होती। तो ऐसे आप समझा सकते हैं, जहां भगवान उपस्थित हैं वहां भला कैसे नुकसान हो सकता है? कई बार लोग ऐसे भी देखते हैं नरसिंह देव भगवान का जो चित्र है, क्योंकि उग्र रूप में है, वो कहते हैं घर में नहीं रखिए ये बड़ा भयानक चित्र है। लेकिन भगवान का चित्र है, भगवान का चित्र भले वो उग्र रूप में हो, सौम्य रूप में हो, किसी भी रूप में हो,